اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ علم والوں کا جو اختلاف ہے نا، یہ سب سے خطرناک اختلاف ہے. دیکھیے بے علم ہے، اس کو علم مل گیا وہ آ جائے گا، دیٹس اٹ. اور جب علم والے کے پاس علم ہے، اس کا آنا بہت مشکل ہے. میں اس کو ایسے سمجھتی ہوں کہ جیسے ایک سفید کپڑا ہے، کورا کپڑا، کوئی رنگ نہیں اس پہ چڑھا ہوا. آپ کوئی بھی اس پہ رنگ ڈالیں گے نا، فوراً چڑھ جائے گا. لیکن جس کپڑے پہ پہلے سے کوئی رنگ چڑھا ہوتا ہے نا، اس پہ دوسرا رنگ لگانا بہت مشکل ہے. اس کے لیے جب تک پہلا رنگ نہیں اترے گا، دوسرا نہیں چڑھے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب، خاص طور پہ جس ٹیکسٹ میں یہ آیات چل رہی ہیں، یہود مدینہ یا اگر نجران کے وفد کی طرف اشارہ ہے، تو ان کا اختلاف یہ نہیں تھا کہ ان کو اللہ کے نبی کی حقانیت نہیں پتہ تھی. بعض باتیں لوگوں کے دل تسلیم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی جذبے کی وجہ سے وہ زبان پہ نہیں لاتے. یقین کریں، جن لوگوں کو آپ دعوتیں دیتے ہیں نا، کھرے عام جس طرح کلاس کی، میں ان میں سے کچھ لوگوں کو ملتی ہوں، وہ لوگ میرے سے بات کرتے ہیں، یا وہ اس کلاس میں آنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، یا خود بخود اپنی کوششوں کا اظہار کرتے ہیں. ہم کوششوں میں ہمارا بڑا دل چاہتا ہے، ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، ہم ضرور ضرور. میں نے کبھی نہیں کہا، میں کہتی ہوں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. یہ خود وہ مان رہے ہوتے ہیں، پھر کیوں نہیں آ پاتے؟ ابھی کچھ رکاوٹیں، ابھی کچھ رسیاں، کچھ جس کو کہتے ہیں نا، کچھ ٹائز ہیں جن کو توڑنا ہے. خود جانتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے، کچھ چیزوں کو دل مان چکا ہوتا ہے، انسان نہیں مانتا. اس کے لیے وقت دینا چاہیے. آپ اپنا کام کرتے رہیں اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ. کسی کو اس نیت سے نہ ملیں کہ آپ اس کلاس کے ساتھ ہی ہیں تو بڑی محبت ہے، اور دوسرا کوئی آپ کی اب کلاس میں نہیں آ رہا تو آپ اس کو ایسے نظروں سے دیکھ لیں کہ تم تو پتہ نہیں مسلمان نہیں رہی. اتنی بری سوچ ہوتی ہے نا یہ، کہ صرف لوگوں کو اپنی کلاس کے لیے ملنا. میں مانتی ہوں کہ محبت ہوگی آپ کو، آپ سب روز آتے ہیں، ملتے ہیں، بریک میں پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، آپس میں کھاتے ہیں، پیتے ہیں چیزیں، خوشی ہوتی ہے، یہ ایک انسانی طبیعت ہے. لیکن کبھی یہ مت سوچیے گا کہ جو اس کلاس میں نہیں آ رہے وہ آپ سے کم اچھے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو آپ سے اچھے ہیں لیکن ابھی یہاں نہیں آئے، یہ مجھے پورا یقین ہے، اور مجھے اللہ سے امید ہے وہ بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ہماری محبتوں کا معیار یہ کلاس نہیں ہے، یہ نام نہیں ہے. ہاں، ہر وہ بندہ جو علم کی، دین کی سچے دل سے خدمت کر رہا ہے، صحیح سوچ دے رہا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، چاہے وہ مشرق میں یا مغرب میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ کو بیان کیا کہ دیکھیں یہ اختلاف کس میں بدل گیا. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، نوٹ کیجئے گا، اختلاف انکار میں بدل جاتا ہے. حد ہوتی ہے نا ایک چیز کی، فرکشن کی، اصرار. آپ گھومتے گھومتے یوں ہاتھ کرتے ہیں، ادھر لگاتے ہیں، ادھر کرتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ علم جو ہوتا ہے وہ انسان کا بالکل مخالفت میں بدلتا ہے. مخالفت ہوتے ہوتے پھر اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اس کے بعد پھر ایک انسان بالکل اس دین سے نکل جاتا ہے. ایسے سارے لوگوں کے لیے اس بات کی دھمکی ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. اس کو غافل نہ سمجھو، وہ دیکھ رہا ہے تم کیا کرو گے، تم کدھر کر رہے ہو، تم کس خاص سوچ کی وجہ سے دین کو پیچھے کر رہے ہو. اسی وجہ سے تمہیں چوٹ پڑے گی تو تم واپس آؤ گے. اس لیے تم اپنے نام کو اونچا کرنے کے لیے، اپنی ناک کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں میں اونچا رکھنے کی نیت سے اگر اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہو، اللہ کے دین کو بدلنے لگتے ہو، تو یاد رکھو کہ اللہ حساب لے گا. اور یہاں خاص طور پہ آیات اللہ سے مراد وہ آیتیں ہیں جو اسلام کے دین الہی ہونے پر دلالت کرتی ہیں، کہ تمہیں پتہ چل چکا ہے کہ یہ دین سچا ہے، پھر بھی تم نہیں مانتے، تم بحثوں میں پڑے رہتے ہو تو پڑھتے رہو. ایسے لوگوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کیا جائے، اب اس کا تذکرہ اگلے حصے میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دل میں کچھ اور رکھتے ہیں، جو اختلافی ذہن رکھتے ہیں، ان کی ایک خاص عادت ہوتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے، بحث بہت کرتے ہیں، وہ مناظرے بہت کرتے ہیں، مذاکرے کرتے ہیں، جھگڑے لاتے ہیں. لہٰذا فَإِنْ حَاجُّوكَ، بس اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، یہاں جھگڑے سے مراد حجت بازی، بحث بازی، یعنی اگر آپ کو الجھانا چاہیں، ان بحثوں میں، ان باتوں میں لگانا چاہیں، تو کیا کرو، تم بھی بحث کرو. نیور. فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، تو کہہ دیجئے کہ میں تو مسلمان ہو گیا اپنے رب کے لیے، میں نے تو اپنا چہرہ جھکا دیا اپنے رب کے آگے. کیا صرف میں نے؟ نہیں. وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور انہوں نے بھی جنہوں نے میری پیروی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ اگر یہ بحثیں کرنے والے آپ کی طرف آئیں، بحث کریں، جھگڑنا چاہیں، تو آپ ان کو بتا دیں کہ نہیں بھائی، سوری، میں نہیں کرتا، یہاں بحث منع ہے، جھگڑوں میں نہ پڑیں. बस हम तो अपना काम करेंगे जो कर रहे हैं। कितना प्यारा सबक दिया, झगड़ों से बचो, बहस मुबहसों से बचो। देखो तुम्हारा काम कायल करना नहीं है उनको, बस अगर कोई तुमसे उलझता है ना तो तुम अवॉइड करो। ये है अवॉइडेंस की पॉलिसी। अवॉइड करना क्या होता है, छोटी सी मिसाल से समझ सकते हैं। आप जा रहे थे, आपके रास्ते में एक पत्थर दिखा, आपको हटा नहीं सकते, क्या करेंगे? ठोकर लगाएंगे, आपका जूता टूट जाएगा, जोर से लगाएंगे अंदर से नाखून भी टूट जाएगा। उस पत्थर को उठाना चाहेंगे, एनर्जी ज़ाया होगी। बेस्ट पॉलिसी क्या है, थोड़ा सा उससे कन्नी को उतरा के साइड से गुजर जाए। इसको कहते हैं अवॉइडेंस। अवॉइड करो, अपना रास्ता बदलो, ट्रैक थोड़ा सा चेंज कर लो। ये लोग जब तुम्हें इस तरह उलझाएं कि देखो ये ठीक वो ठीक, ये गलत, इस्लाम ऐसा, इस्लाम औरत को हुकूक नहीं देता, इस्लाम ये वो, तो तुम इसे क्या कहो, असलम तो वजही अल्लाह, मैं मुतमईन हूँ अपने दीन पे। लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। और सिर्फ मेरा ही ये पैगाम नहीं या मेरी ही ये सोच नहीं, बल्कि मेरे पैरोकार की भी यही है। ये है बचने का रास्ता। देखिए कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कुछ लोग ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले लेते हैं कि हमने फलां को आज कायल करके ही आना है। अब होता क्या है, बाज़ दफ़ा कायल करने की कोशिशों में वो अपने आप को नुकसान दे लेते हैं। मसलन कोई कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास हज़ारों लोग जमा हो जाए। अब आप सच्चा दीन पेश करते हैं, बहुत थोड़े आते हैं, क्योंकि लोग तो वो करना ही नहीं चाहते जो कुरान पाक कहता है। और ऐसा कुरान पढ़ाना जिसके बाद ज़िंदगी में कोई तब्दीली ना आए, ये बहुत आसान है। लोग ऐसा कुरान पढ़ने के लिए आज भी तैयार हैं जिसके बाद ना किसी अमल को बदलना पड़े, ना सोचो, बस मीठा मीठा इस्लाम और मीठी मीठी सुन्नतें और ये कर लो और वो कर लो। लेकिन अगर ऐसा करना दुरुस्त होता कि तुम भी खुश तो मैं भी खुश, तुम भी आ जाओ, तुमको भी नाराज़ नहीं करना, तुम भी आ जाओ, तो याद रखिए कि ये काम फिर अंबिया कराम करते। लेकिन आप अगर सीरत को पढ़ लें, हर नबी की सीरत पढ़ लें, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़ लें, आपने लोगों की यही ख्वाहिश नहीं पूरी की, वरना आपकी इतनी मुखालफत ना होती। 13 साल जो मक्का में मुखालफत थी वो अकीदे की थी, जिसका तذकरा आगे आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक दीन को पेश कर देना, ये लोगों का मुतालबा होता है। अल्लाह ताला कहते हैं देखो ऐसे मुतालबे करने वालों को अगर तुम अपने साथ मिलाना चाहते हो और तुमको कोई बात नहीं, लोग खुश ही हो जाएंगे ना। आज के दौर की बातें, आज के दौर में ये मुमकिन नहीं, चलो कर लो। आज के दौर यहाँ रहते हुए, मशरिक में रहते हुए, मगरिब में रहते हुए, ऐसी ढीली बातें करने से हो गया क्या कि तुम्हारे पास अगर 10 लोग थे ना तो वो 100 हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारा अपना दीन बदल चुका होगा। ये ऐसी जैसे आपके सादा ग्लास पानी का एक एक घूंट देंगे तो हो सकता है 10 लोगों को मिल जाए। आप कहते हैं कि ये तो सिर्फ 10 ने पिया है, चले आप जमजम की बात कर लें, आधा ग्लास जमजम था। आप कहते हैं चलो इसको ज़्यादा में पिलाते हैं, आप उसके अंदर 2 ग्लास सादे पानी के डालते हैं। ठीक है, जमजम में अगर आप सादा पानी मिलाएंगे ना तो तासीर अगर कम होगी लेकिन कुछ ना कुछ प्योरिटी मिल जाएगी, लेकिन अगर आप सादे पानी में कीचड़ वाला पानी डाल लेंगे ना तो वो भरा हुआ ग्लास 100 लोगों को बीमार कर देगा। होगा कि नहीं? तो ज़रूरत इस बात की है कि इंसान इसको मत देखे कि कितने लोग हैं मेरे साथ। हक की शान ये है कि थोड़े लोग उसको मानते हैं। हज़ारों लोग भी आ जाएंगे ना हक के साथ तो वो लाखों और करोड़ों के मुकाबले में थोड़े ही हैं, क्योंकि दुनिया इस वक्त करोड़ों की तादाद में पहुंच चुकी है आबादी। तो इसलिए इस चीज़ की ज़रूरत नहीं महसूस करनी चाहिए और ये ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए कि गलत चीज़ें ले, बल्कि अपना पहलू बचाएं कि असलम तो वजही अल्लाह, कि मैं तो अपने रब को मानूंगा और बस, तुम मेरी बात मानो ना मानो, मेरी बात मानने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को दिया हुआ है। और आप देखिए कि लाइफस्टाइल को तब्दील करना जो होता है ना, ये सबसे मुश्किल चीज़ होती है। लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर नतीजा क्या होता है कि लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं। मसलन एक ऐसी सोच मुसलमानों में भी पैदा हो चुकी है, वो कहते हैं कोई हरज नहीं, दरसों और वाजों में ज़ईफ़ रिवायतों को पेश कर दो। नतीजा क्या होगा कि जब तुम ज़ईफ़ रिवायतें पेश कर दोगे, उसको सुन के लोग रग़बत में आते हैं और दीन की तरफ लग जाते हैं। ये एक बड़ी मारूफ सोच है इस वक्त हमारे मुसलमानों ही के अंदर। मिसाल है कि एक हदीस पेश की जाती है कि ये तुम बात करोगे तो जन्नत में तुम्हें 40 महल मिल जाएंगे, 70 हूरें मिल जाएंगी, 80 ये मिल जाएंगे। वो कहते हैं क्या हर्ज है इसमें, कोई और बात तो नहीं ना, रग़बत ही दिला रहे हैं ना। देखो इसको सुन के कितने लोग दीन की तरफ आ गए। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रिवायत के जिसने जानते बूझते मेरी तरफ गलत बात को मंसूब किया तो उसका ठिकाना आ गया। और दूसरी बात है कि आप ये साबित कर रहे हैं कि सही रिवायतें इस काबिल नहीं है कि उससे लोगों को मोटिवेट किया जाए। और तीसरी बात याद रखिए कि अबू बकर और उमर और फलां जो मुश्किल दौर में इस्लाम की तरफ आए थे वो ऐसी फजीलतें सुन के नहीं थे आए। और जो लालच पा के इस्लाम की तरफ आता है ना वो इतना खरा नहीं होता जो मुश्किलात में और हक को हक समझ के आता है। अल्लाह पे ये काम डाल दें, हमें इसकी परवाह नहीं है कितने आते हैं, लेकिन इस जुबान से सच ही निकलेगा। वकुल लिल्लज़ीना उतुल किताब, और कह दीजिए उतुल किताब को यानी अहले किताब को और उम्मीजीना और उम्मीजीन को, मुराद कौन है? मक्का वाले मुशरिकीन। आ असलम तुम, क्या तुमने मती किया अपने आप को, क्या तुम ताबे हो गए, क्या तुम झुक गए? फ़इन असलमू, फिर अगर वो ताबे हो जाएं, इत्तबा कर लें या आपकी बात को मान के अल्लाह के आगे झुक जाए, तो फ़कद इहतदऊ, तो बेशक उन्होंने सीधी राह पा ली, फिर उनको हिदायत मिल गई, उनको वो सब कुछ मिल गया जो कि उनको पाना था। और अगर ये नहीं, वइन तवल्लौ फइन्नमा अलैकल बलाग, फिर अगर वो मुंह फेर लें तो बस बेशक आपके जिम्मे तो पहुंचा देना है, क्योंकि वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों को खूब देख रहा है। अल्लाह ताला को पता है मेरे बंदे क्या कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ऐलान कर दिया गया कि इन मक्का वालों और मदीना के रहने वाले अहले किताब को बता दो कि ये जो हम बार बार तुम्हें इस्लाम की दावत दे रहे हैं, इसकी ये वजह नहीं है कि तुम्हारे आने से कोई हमें तकवीत मिलेगी, इस्लाम मजबूत होगा, बल्कि हम तो तुम्हें इसलिए बार बार बुलाते हैं कि इसमें तुम्हारा ही फायदा है, तुम मान जाओगे, तुम बच जाओगे, और अगर तुम जिद पर अड़े रहे, इसको कबूल न किया, तो तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ोगे बल्कि असल में नुकसान तुम्हारा होगा, आखिरत भी तुम्हारी बिगड़ेगी और दुनिया में भी तुम पीछे जाओगे। इस आयत में एक बड़ा प्यारा सबक हमें दे दिया गया, और वो क्या है कि अगर आप मधु को, मधु कौन होता है? जिसको दावत दी जाए, जिसको आप इस्लाम की दावत देते हैं, जिसको आप कुरान की दावत देते हैं, जिसको आप इस क्लास की दावत देते हैं, वो मधु है। अगर आप मदऊ को ये यकीन दिला देना कि मेरी बात मानने से तुम्हारा फायदा है, तो वो ज्यादा जल्दी आते हैं इसकी निस्बत कि ये लगे कि शायद इसमें आपका कोई फायदा है। बस दफा हम लोगों को ये फीलिंग्स देने लगते हैं कि देखो ना, अब तुम ना आए तो फिर ये होगा और ये है, प्लीज आ जाओ, हमें बहुत सवाब होगा, मैं सवाब के लिए ये काम कर रही हूँ। वैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मैं आपको ये पूरी फीलिंग्स दिलाऊं ना कि देखे प्लीज मेरे से पढ़ने आ जाएं ताकि मेरा सवाब बढ़े। आप में से जितने ज्यादा लोग आएंगे ये मेरा सदका जारिया बढ़ेगा, मुझे सवाब मिलेगा, मेरा जन्नत में दर्जा ऊंचा होगा। तो जरूर आप सोचेंगे कि भाई आपको फायदा देने के लिए हम क्यों आए। जरूर इंसान के जहन के अंदर नेगेटिविटी शुरू होती है कि अच्छा जी आपका फायदा फिर होगा, हम क्या करें। और अगर मैं उन्हें कह दूं कि देखें आप आएंगे ना तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा, आपके बच्चों को फायदा होगा, आपके घर संवरेंगे, तो सोच बदल जाती है ना। यही पैगाम इधर दिया गया दो टोक तरीके से कि मत सोचो कि तुम हमारी जरूरत हो, हमारे लिए तो वो बहुत हैं जो आ गए, लेकिन तुम नहीं आ रहे इसका दुख बहुत है। और अब आखिरी दो आयतें जो इस लेसन की हैं, इसमें अब यहूद को उनकी तारीख याद दिलाई जा रही है कि इन अल्लज़ीन यकफुरून बी आयातिल्लाह, जो लोग इनकार करते हैं अल्लाह की आयतों का, कौन सी आयतें? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो कुरान पाक की दावत दी जाती है, इस्लाम कबूल करने की दावत दी जाती है, ये तो अब कर रहे हैं, या माजी में अल्लाह ताला की जो भी आयतें थी, तौरात की आयतें थी जो नाजिल हुई, उनका इनकार किया। और दूसरा इनका बड़ा जुर्म क्या है? वह यक्तुलूनन नबीय्यीन बिगैरी हक्किन, और वो कत्ल करते हैं पैगम्बरों को ना हक, नबियों को ना हक कत्ल करते हैं। और क्या करते हैं? वह यक्तुलूनल लसीन यामुरून बिलक़िस्त मिनन नास, और वो कत्ल करते हैं उन लोगों को जो इंसाफ करने का हुक्म देते हैं लोगों में, यानी नबियों को भी कत्ल किया और नबियों के बाद उन लोगों को भी कत्ल कर देते हैं या उसका हुक्म देते हैं जो लोगों में इंसाफ की बात करते हैं, अच्छी बातों का हुक्म देते हैं। मुराद जय के इल्म की नशोइशात करने वाले, लोगों के अंदर अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करने वाले। और तीसरा इनका जुर्म क्या है? वयक्तुलून अल्लज़ीन यामुरून बिल क़िस्त मिनन नास फबशिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। बस खुशखबरी सुना दीजिए इनको दर्दनाक अज़ाब की। यहूद के दो बड़े जुर्म इन आयतों में पेश किए गए। पूरी आयात को जमा कर लेना 20 से 25 तक, तो इसमें बनी इसराइल यानी यहूद की सारी ही वो चीज़ें पेश कर दी गई जिसकी वजह से इनको इमामत के मनसब से उतार कर मुसलमानों को इनकी जगह पे खड़ा कर दिया गया कि इन्होंने जुल्म किया, अल्लाह की आयतों को ना माना। फिर उसके बाद जो नबी इनके पास आता उसको कत्ल करना चाहते, कोशिश भी करते और किया भी उन्होंने। मसलन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का दावा ये खुद करते हैं, इन्ना कतलनल मसीह, या हमने ईसा को कत्ल कर दिया। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को इन्होंने कत्ल किया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को इन्होंने कत्ल किया। अल्लाह के नबी सल्लम की रिवायात से ये चीज़ मिलती है कि ये लोग नबियों को इस तरह कत्ल करते थे कि एक एक दिन में इन्होंने 300 से 400 नबियों को कत्ल किया। और इनकी तारीख में कत्ल इतना आम हो चुका था कि रिवायत में आता है कि ये वो लोग हैं कि सुबह होती तो 300-400 नबियों को कत्ल करते और शाम को सब्जी पालक बेचना शुरू हो जाते। यानी बिल्कुल आम बात हो चुकी थी इनके लिए नबी का कत्ल। और नबियों के बाद फिर यक्तुलून अल्लज़ीन यामुरून बिलक़िस्त मिनन नास, हर वो बंदा जो दीन की बात करता है उसको मारना शुरू कर देते थे। एक दिन में इन्होंने 43 नबियों का कत्ल किया, एक किसी दूसरे दिन में 313 नबियों का कत्ल किया। और आपको मालूम होगा कि बनी इसराइल की तरफ 4,000 के करीब पैगंबर भेजे गए थे और इनमें से अक्सर को इन्होंने कत्ल कर दिया। और अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे लोगों को फबशिर हम भी अजाब नलीम, दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दें। सिर्फ अजाब अलीम नहीं, उलाइक अल्लज़ीन हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, ये वो लोग हैं जिनके आमाल दुनिया और आखरत में ज़ाया हो गए। वमा लहुम मिन नासिरीन, और इनका कोई मददगार नहीं, इनकी कोई मदद करेगा नहीं। यानी इनको क्या सज़ा मिली कि अल्लाह ने इनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार किया है? वो क्या होगा अल्लाह को मालूम है, क़यामत में जो इनके साथ मामला होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि इनके आमाल दुनिया और आखरत में ज़ाया हो गए, यानी कुछ अमल इन्होंने जो किए भी हुए थे ना वो ज़ाया हो गए। ज़ाहिर है कुछ चैरिटी के काम, कुछ ना कुछ तो अपने दीन की बात मानते ही थे ना, इन सब बातों को भी अल्लाह ताला ने ज़ाया कर दिया। फिर इसी तरह इनको अल्लाह ताला आखरत में भी महरूम करेगा। ये इतनी तकलीफ़देह हकीकत है कि अगर इस पे इंसान गौर करे तो उसको पता चल जाता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। आप देखिए कि एक बंदा अमल करता ही नहीं है और एक करे और ज़ाया हो जाए। ये ऐसे कि एक खातून खाना पकाती नहीं है, सारा दिन ऐश करती रही, मर्जी से अपने आप को बहलाती रही, और दूसरी वो है जो सारा दिन किचन में खड़ी खाना पकाती रहे और एंड पे सारे का सारा खाना गिर जाए, जल जाए या कुछ और हो जाए। कौन ज़्यादा खसारे में है? जिसने किया और ज़ाया हो गया। नेक आमाल की तौफीक मिल जाना ये भी अल्लाह की रहमत होती है, लेकिन इन आमाल को संभाल के रखना ये इससे भी बड़ी नेमत होती है। तो हम कुरान और सुन्नत के रेफरेंस से सिर्फ नोट करेंगे कि नेक आमाल कब ज़ाया हो जाते हैं। दलाइल का इस वक्त नहीं है, लेकिन हर एक अल्हम्दुलिल्लाह दलील मौजूद है। नंबर एक, कुफर की मौजूदगी में। काफिर जब कोई नेक अमल भी करता है तो उसके कुफर की वजह से उसको नेकियों का अजर भी नहीं मिलता, नेक अमल ज़ाया। दूसरी वजह होती है रियाकारी की वजह से, दिखावा जो होता है ये नेकियों को ज़ाया कर देता है। तीसरी चीज़, फ़राइज़ ना करने वाले की दूसरी नेकियाँ। मसलन कोई फ़र्ज़ नमाज तो नहीं पढ़ता और शबे बरात की सारी रात इबादत करता रहा, 100 नफिल पढ़े, 50 नफिल पढ़े, पढ़ते रहे, अब शौक से पढ़े, कल क़यामत के दिन पहले अल्लाह ताला आपसे फ़र्ज़ नमाजों का पूछेगा, और अगर फ़र्ज़ नहीं निकली तो काट दिए सारे। ये ऐसे ही जैसे इम्तिहान में कंपल्सरी क्वेश्चन को छोड़ दो और ऑप्शनल में से जो गुंजाइश थी उसको भी कर लो तो उसका पेपर पूरे का पूरा ज़ाया होता है। चौथी चीज़ होती है इर्तेदाद, यानी इस्लाम से फिरना, इस्लाम से जो कुफर पे जाते हैं वापस रिवर्ट हो जाते हैं कुफर की तरफ, इसके अमल पिछली जो नेकियां होती हैं वो सारी ज़ाया हो जाती हैं। इसी तरह गीबत, क़यामत के दिन जब लोग अपनी नेकियों को वहाँ मौजूद नहीं पाएंगे तो पूछेंगे हमारी नेकियां कहाँ गई, तो फरिश्ते कहेंगे कि वो जो गीबतें तुम करते थे उसकी वजह से तुम्हारी दूसरी नेकियां डिलीट हो गई। और जो लोग कंप्यूटर्स चलाते हैं उनको ये बात बहुत आसानी से समझ आएगी। आपके 2 घंटे लगा के लिखे हुए पेपर सिर्फ एक डिलीट का बटन दबने से ज़ाया हो जाते हैं। आपकी फाइल गलती से आप उसको गलत बटन दबा दें, आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। इसी तरह वो लोग जो नेकियां करते हैं उनकी कुछ वजूहात से नेकियां ज़ाया होती हैं। इस तरह छठी चीज़ है हसद। फिर इसी तरह गुस्सा। गुस्से में इंसान की अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है, अच्छे और बुरे की बिल्कुल तमीज़ नहीं रहती, और इंसान बाज़ दफ़ा अपनी ही नेकियों पे पर्दा डाल देते हैं। मसलन मुझे नहीं पढ़नी नमाज, अच्छा मैं आज के बाद ये काम नहीं कर रही, किसी भी वजह से इंसान जो है वो काम कर देता है और नतीजा उसका फिर ऑपोजिट निकलता है। फिर इसी तरह आप देखिए हिर्स और लालच। बस दफ़ा इंसान जब लालच में आता है ना तो वो नेकियों को छोड़ के सिर्फ दुनिया ही मजीद बढ़ाने लगता है, और से और काम कर लेता है, और नतीजा क्या होता है कि नेक अमल करने का वक्त ही उसके पास नहीं बचता। फिर इसी तरह शिकमपुरी, बहुत पेट भर के खाना, बहुत ज़्यादा खाने खाने की ख्वाहिश होनी, क्योंकि नेक अमल का वक्त कहाँ रहेगा जब आप हर वक्त खा रहे हैं और पका रहे हैं। एक पतीली उतरती है तो दूसरी चढ़ जाती है, पहले खाना है फिर चाय है फिर उसके बाद कुछ और है फिर कुछ और है, आप नेकियां कर ही नहीं पाते। फिर नवी चीज़ है जल्दबाजी, अल आजिला इसको बोलते हैं। हदीस में आता है अल आजिला तो मिन शैतान, यानी किसी की बात पूरी सुनी नहीं, बीच में बोले, अभी वो बात कर ही रहा था कि आपने उससे पहले ही एक्शन ले लिया और आप अपनी उस नेकी को खो देते हैं जो आप उसके बाद मजीद कर सकते हैं। फिर इसी तरह माल दौलत की मोहब्बत, क्योंकि माल की मोहब्बत बढ़ती है ना तो इंसान हराम माल तक पहुंच जाता है और दीवाना हो जाता है, और ज़्यादा माल हासिल करने की जो हिर्स है ना वो नेकियां करने की हिर्स को कम कर देती हैं। फिर इसी तरह खुदगर्जी और बुखल। जो खुदगर्ज होता है ना और बखील होता है, बाज़ दफ़ा उसके बहुत चांसेस होते हैं नेकी करने के, दूसरे को भी फ़ायदा दूं लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं करता, मेरी वाली चीज़ किसी और को क्यों मिले, लिहाजा अपने तक रोको, उसकी नेकियां भी ज़ाया होती हैं। फिर 12वीं चीज़ है मजहबी तासुब, ये तो बहुत ही आम है, मेरा फ़िरका, मेरी जमात, मेरा गिरोह, इमाम फलां फलां, यानी आपको पता है कि ये चीज़ है अच्छी, मैं दूसरों को भी बता सकती हूँ, लेकिन आप क्यों नहीं बताते, क्योंकि फिर वो दूसरे का नाम ऊंचा हो जाएगा ना। हाँ आपके पास कुछ भी नहीं हो रहा, आप उसको तो खूब प्रमोट करेंगे, उसको तो खूब लोगों तक फैलाएंगे, लेकिन किसी दूसरे की अच्छी चीज़ का भी पता होगा ना, आप सिर्फ इसलिए नहीं बताते कि इससे मुझे क्या फ़ायदा होना है और मेरे नाम को क्या फ़ायदा होना है। ये जो है वो बहुत ज़्यादा इंसान को तकलीफ़ देता है। इमाम गज़ाली बल्कि इसके बारे में कहते हैं कि दिल के मजबूत किले तक पहुँचने के लिए शैतान का जो चोर दरवाज़ा है वो मजहबी तासुब है। इसके ज़रिए शैतान दिलों तक पहुँचता है कि अपने मसलक के अलावा दूसरों की कोई बात अच्छी ही नहीं लगती। फिर इसके बाद 13वीं चीज़ जिससे इंसान की नेकियां ज़ाया होती है वो बिदात है। हदीस में आता है कि बिदती के बाकी अमल को भी अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। बाज़ लोग तो ये सोचते हैं ना, अच्छा ये काम कर लेते हैं, ना हुआ तो ना कबूल होगा, मिसाल है कि अच्छा जी अल्लाह के नबी ने ये नहीं किया तो ना कबूल हो, लेकिन उनके सामने ये हदीस रहनी चाहिए कि सिर्फ वो अमल नहीं बल्कि उसके दूसरे नेक अमल भी फिर कबूल नहीं होते, और इस पे जहाँ कहीं मौका आएगा तफसील से बात जो ही वो हो जाएगी। अब आप सोच लीजिए कि कितनी मुश्किलात से गुजर के जब नेकियां की जाएं तो ये ज़ाया हों तो उस इंसान के लिए कितनी ज़्यादा बदबख्ती की बात है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ यहूद मदीना को ये बात कही। एक छोटा सा सवाल जहन में आता है कि मदीना के जो यहूद थे उन्होंने खुद तो नहीं ये सब किया था अम्बिया को कत्ल, गो के अल्लाह के नबी को जहर देने की कोशिश की गई, हलाक करने की गई, लेकिन यक्तुलूनन नबी जीन तो उनके बाप दादा का फेल था, तो इनको क्यों कहा जा रहा है कि तुम करते हो। अगर आप अरबी के नाते से देखें ना तो यहाँ प्रेजेंट के सेंटेंस हैं कि तुम करते हो, तो इसकी वजह क्या है कि ये बाप दादा के इन कारनामों पे फख्र किया करते थे, महफिले से जाते थे, उस पे बातें करते थे, हमने ये किया वो किया। आज भी बाइबल में आपको ऐसी रिवायतें मिलेंगी जिसमें अंबिया कराम के कत्ल को ये बड़े फख्र से पेश करते हैं कि हमने उसको मारा उसको मारा, तो अल्लाह ताला कहते जाओ फिर, वमा लहुम मिन नासिरीन, फिर तुम तन्हा रह जाओगे, अकेले रह जाओगे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो खुलासा क्या है कि इनको तंबीह की जा रही है, अपनी रविश छोड़ दो, अपने आप को बदल लो, वरना दुनिया की ये बातें तो होंगी सो होंगी, आखिरत में जो तुम्हारी पकड़ होने वाली है वो इतनी शदीद है कि तुम जब वहाँ पहुँच जाओगे तो वापस पलटना चाहोगे लेकिन तुम पलट नहीं सकोगे, और ऐसे वक्त में फिर ये सारी चीज़ें तुम्हें तकलीफ़ देंगी। तो हमारे लिए भी इसमें अमल की बात यही है कि अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देना है। अब आप देखिए कि जो आयत नंबर 19 से लेके 22, 19 से 22 तक जो पूरा टॉपिक चला है ना, उसको मैंने कोशिश की थी एक मौके पे, बहुत पहले जब मैं खुद इन आयत को पढ़ रही थी, कि एक एक्टिविटी की शक्ल में पेश किया जाए। और मैं आप सबको ये चीज़ बार बार कहूँगी कि आप हर सबक में से कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर बनाएं। जो पिछली आयतें थी जो मैंने ही आपके साथ शेयर की, कि शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा, इस आयत को हर पत्ते पे लिखा हुआ पाया, बादल के टुकड़ों में लिखा हुआ पाया। और वो कोटेशन मुझे कितनी दफ़ा याद आती रही जो आपको बताई थी, कि शहीद अल्लाह की जो अल्लाह ताला ने गवाही दी है वो कहाँ दी है, कि कायनात की एक एक चीज़ पे ये गवाही दी हुई है, कि अल्लाह ताला ने कायनात की किताब के हर सफ़े पर अपनी तौहीद के ऐसे रोशन और अटल दलाइल सब्त फरमा दिए जिससे कोई साहिब अक्ल सलीम इनकार नहीं कर सकता। अब पता नहीं हमारी अकलें कहाँ होती हैं। तो मैंने उसी वक्त सोचा कि कोई अगर मेरे पास हो तो मैं उसे कहूँ कि आप इस पर एक्टिविटी बनाएं, कायनात की चीज़ें, बादल हैं तो उसमें ये आयत लिखी हुई है, कहीं पत्तों में है, कहीं बर्फ़ गिर रही है, कहीं मिट्टी में है, कहीं हवाओं में है, ये इसी से फिर आपको हर वक्त अल्लाह ताला की मौजूदगी का एहसास होगा। अब ये 19 से 22 तक अगर एक्टिविटी है तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लें, फिर आप इससे भी अच्छी बना सकते हैं। मसलन ये देखिए कि इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम लिखा, कि दीन जो था अल्लाह ताला की तरफ से इस्लाम था। इसको आज के दौर में मारूफ तीन गिरोहों में अगर बांटें, नंबर एक यहूदी, यहूदा की तरफ निस्बत ले गए तो यहूदी कहलाए, ठीक है, इनको अल्लाह ताला ने तौरात दी। दूसरा गिरोह था नसारा, क्यों नसारा कहलाए, नासरा नाम की बस्ती की तरफ निस्बत की जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, इनकी तरफ इंजील आई। तीसरा इसमें से गिरोह जो था वो मुसलमानों का था, आजकल के मुसलमान, जैसे यहूदी यहूदा की तरफ निस्बत से, नसारा नसारा की तरफ निस्बत से हुए। अफसोस की बात है, ये देखिए कि ये मुसलमान आज चार टुकड़ों में बट गए, हनफी शाफई हम्बली मालकी, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की तरफ निस्बत, शाफई इमाम शाफी हम्बली, यानी बिल्कुल ये आपको एक ही चेन नहीं लग रही, एक ही टेक्स्ट है, इंसानों की तरफ निस्बतें हुई। हुआ क्या, वमख्तलफल्लज़ीन ऊतुल किताब, ये ऊतुल किताब को मैंने इधर खींच दिया, ये थे, इल्ला मिन बादी मा जाहुमुल इल्म, इसके बाद कि उनके पास इल्म आ गया। इख्तलाफ की वजह क्या थी, बग़यम बैनहुम, बग़ी क्या होती है, सरकशी, तासुब, हसद, फ़िरकाबाजी, ज़िद, झगड़े, ज़ाती फ़ायदे और वट एवर। फिर ये जो हमने अभी देखा है, हबितत आमालुम फिर दुनिया वल आखिरा, तो आमाल के ज़ाया होने की जो भी हमने कुछ किस्में देखी, इसके देखिए डिफरेंट लेवल हैं, कुछ अकीदे से मुतल्लिक होती हैं, मसलन कुफर, शिर्क, रियाकारी, फिर दूसरे लेवल पे इर्तदाद, फ़राइज़ अदा न करना, कत्ले अम्बिया, कत्ले उलमा, फिर तीसरे दर्जे पे अखलाकी चीज़ें हैं, गुस्सा, गीबत, खिर्स, लालच, पेट भर के खाना, जल्दबाजी, फिर इस तरह। अब ये एक छोटा सा आइडिया है, अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमारे दिल खुल जाए और सोच लग जाए और फिक्र लग जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह लेसन पूरा हुआ, अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة الْآيَاتُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.